الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. گزشتہ دو ہفتے میری محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں آپ کے سامنے ماں کی دعا اور ماں باپ کا احترام بچوں کے دل میں ہونا چاہیے، اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کیا. آج آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور باپ قائم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی تربیت اور بچوں کے حقوق کیا ہے. ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق کیا ہے، یہ بات تو پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے بچوں کے رشتے، شادی، نکاح، سنت اور شریعت کی روشنی میں کرنا چاہیے، تو آنے والی نسلوں میں، گرینڈ چلڈرنز میں، نواسوں میں، پوتوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو ظاہر فرماتے ہیں. اولاد نیک صالح ہوتی ہے، مطیع و فرما بردار پیدا ہوتی ہے. اب مسئلہ ہے ہماری نئی نسل اور اولاد کا، فیوچر نسل، جنریشن اور تعلیم و تربیت آف اوور چلڈرن، گرینڈ چلڈرن، گریٹ گرینڈ چلڈرن کس طرح کریں، کس طریقے سے معاشرے میں سدھار پیدا ہو، اس کے لیے علماء نے اولاد کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں جن کی ادائیگی تو فلفل دا ریسپانسبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس، ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. موسٹ آف دا اسکالرز they mention the 10 rights of the children upon parents. The parents have 10 rights to fulfill the children's. Parents have 10 responsibility to fulfill the rights of the children. 10 حقوق ہے. اس میں کچھ تو وہ ہے جس کا تعلق ماں کے ساتھ ہے. Some of the rights is connected with the mother only. اور کچھ ہے वो बाप और मां के साथ है। और ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस है मां बाप के ऊपर कि अपने बच्चों के हकूक को पूरा करें। और अपने दोस्त अहबाब और अपने मुतालिकीन को भी इसकी तरफ मुतवज्जे करें, बताएं कि अपने बच्चों का तुम पर क्या हक है। खाली ऐसा ही नहीं है कि बस हम बच्चों के ऊपर हम पूरा बोझ डाल दें कि दे हैव टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। कितनी ऐसे मरहले हैं मां और बाप बच्चों के सारे राइट्स पूरे करते हैं, दुनिया के भी और दीन के भी, फिर भी बच्चे सही तरबियत नहीं पाते हैं, फिर भी बच्चों के दिलों में रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसकी वजह क्या है? तो उसके लिए उलमाए किराम कुछ हकूक बयान फरमाते हैं। पहला हक यह है, जब बच्चा पैदा हो, आइदर योर ओन चाइल्ड, जब ये मां बच्चे को बर्थ दे, व्हेन मदर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, या ग्रैंड या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो, नवासा हो या पोता हो, सबसे पहले बच्चा पैदा होते ही उसको गुसल दिया जाए और उसको सबसे पहले थोड़ा सा कोई ऐसा कपड़ा पहनाए जो सफेद जैसा हो। पहले ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उस पर जाहिर हो जाए। और अगर लड़की है तो उसको कोई कलर वाला पहना दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़का है तो उसको कोई सफेद कपड़ा ऐसा जो हो उसको पहनाना चाहिए। पहले ही पैदा होने के बाद नहलाते ही उसको कोई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद कपड़ा बहुत पसंद था। ये एक काम, बच्चे की पैदाइश के वक्त मां बाप को चाहिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बच्चा अदा किया या बच्ची अदा की। हदीस में आता है जब किसी को औलाद की खुशखबरी मिले तो वो ये लफ्ज कहें, व्हेन यू हियर दैट योर डॉटर माशाल्लाह और योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, स्ट्रेट अवे यू मस्ट से माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हदीस में कौन कहता है, शरीयत का तरीका। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह उस बच्चे को हर आफत और मुसीबत से हिफाजत कर लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो तो भी कह दे माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। कितने मां बाप हैं जो औलाद होने की खुशखबरी पर यह सेंटेंस बोलते होंगे, वेरी फ्यू, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इससे क्या होगा, इस दुआ की पर्दे से अल्लाह हमारे बच्चों को शैतान से बचाएगा। अल्लाह विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम शैतान। तो एक हक तो ये हुआ, गुसल दिया जाए, कपड़ा उसको पहना कर ये कलमा बोल दिया जाए माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अब दूसरा हक क्या है, दूध पिलाने का। मां बच्चे को दूध बावजू होकर पिलाए, प्यार और मोहब्बत के साथ अल्लाह अल्लाह जिक्र कहते हुए पिलाएगी तो बच्चे के पेट में दूध के साथ अल्लाह के नाम का नूर भी पैदा होगा। दो चीजें, قرآن پڑھ کر دم کریں، معوذتین سورة الفلق سورة الناس پڑھ کر دم کر دیا کریں، بچے کو پاک صاف رکھیں. ایسا نہیں صبح نائن او کلاک دا چائلڈ ووک اپ اینڈ ہی اور شی میڈ ڈرٹی، دا چائلڈ میڈ ڈرٹی، ناپاکی، امپیورٹی. ناؤ ویٹنگ فور 3 آورز، 4 آورز، 5 آورز، جب تک یہ لکھ نہیں ہوتا وہاں تک آگے نہیں بڑھتے. بچے کو پاک صاف رکھیں، یہ انتظار کر رہے کب لیک ہو، کب کارپیٹ خراب ہو، کب بیڈ خراب ہو، بیڈ شیٹ خراب ہو، تب یہ لے کے دوڑ کے بھاگتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، بچے کو زیادہ پاک صاف رکھو. ان چیزوں کا اثر انشاءاللہ بچے کی تربیت پر پڑے گا، پاک صاف رہنے کی یعنی رہنے کی اس کو عادت بنے گی. ہاں، اور اگر کسی اور عورت سے دایا سے دودھ پلانے کے لیے بھیجتے ہو تو وہ بھی دیندار اور پاک ہونی چاہیے. یہ دوسرا حق ہے، دودھ پلانا، باوضو پلانا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پلانا. پھر دیکھو بچے میں کیسی تربیت آتی ہے. تیسرا حق ماں باپ کے اوپر، بچے کی تحنیک کرائیں. تحنیک یہ ہے کہ کسی بزرگ، کسی دیندار، عالم، نیک اور صالح کے خدمت میں بچے کو لے جائیں. ٹیک یور چائلڈ، صحابیات یوز ٹو سینڈ اے چلڈرن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچے کے لیے دعا کرائیں، یہ میرا بچہ ہے یا میری بچی، اس کے لیے دعا کرو. اور کوئی میٹھی چیز یا کھجور، سافٹن، وہ بھی ساتھ میں بھیج دے تاکہ وہ عالم کھجور کو دانتوں میں ذرا چبا کر کے اس کھجور کو بچے کی زبان پر ذرا سا مل دے تو وہ شک کرتا رہے، گویا بچے کے پیٹ میں کسی نیک اور صالح عالم دیندار کا لعاب، جو ذاکر آدمی ہے، ذکر اللہ کرنے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، نیک اور صالح آدمی ہے، اس کے منہ کا لعاب بچے کے پیٹ میں جائے گا. اور اس سے حسن ظن اور نیک فالی رکھنی ہے کہ جس طریقے سے یہ نیک آدمی ہے میرے بچے کو بھی اللہ ایسا نیک بنا. تیسرا حق ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے تو میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ عبداللہ پیدا ہوئے، سب سے پہلا بچہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت ابوبکر صدیق کی ڈاٹر تھی اسما، ان کے سنن لوگ کا نام زبیر، ان کی یہاں بچہ پیدا عبداللہ. مدینہ کے یہودی اور منافق کہتے تھے کہ یہ ہجرت کر کے آنے والے سب کمزور ہیں، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا. سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا، اس کو لے کر بھیجا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو چبایا اور اچھی طرح لعاب مبارک کھجور کو لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں سب سے پہلی چیز جو پہنچی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ. تو یہ ایک سنت پر عمل ہے، اس عمل کو کرنا چاہیے. لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب میں ہو
औरत भी हो नेक सालेहा या मर्द हो या आलिम नेक साले हो, जो भी नेक आदमी हो, तो बच्चे के लिए सादतमंदी की बात होगी कि बच्चे के लिए नेक भक्ति की दुआ भी करानी चाहिए। और साथ में इस बरकत पर और इस तहनीक पर भी अमल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के लिए तहनीक करने के बाद दुआ फरमाई, बारक अल्लाहु अलैका, अल्लाह तुम्हें बरकता फरमाए, तुम्हारी जिंदगी में बरकता फरमाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए, उनकी माँ उनको लेकर गई उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, अमीरुल मोमिनीन है, उनके पास ले गई। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी जबान में जरा सा खजूर रखा चबा करके, और उसके बाद दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व हबिबहु इलन्नास, ए अल्लाह इस बच्चे को दीन का बड़ा मुफ्ती बना, फकी बना, और लोगों में उसके इल्म की महबूबियत भी अता फरमा। फकी तो बन गया, मुफ्ती बन गया, नेक बन गया, लेकिन लोग उसके पास नहीं बैठते, उसके इल्म से फायदा नहीं उठाते, तो इल्म हासिल करने से क्या फायदा? और अगर लोगों में महबूब है लेकिन इल्म नहीं है तो क्या फायदा? दो दुआ फरमाई, अल्लाह इसको फकीह भी बना और उसके इल्म की वजह से इनको लोगों में महबूब भी बना। ये दुआ थी उमर रजी अल्लाह। तीसरा हक तो ये हो गया। बच्चे का चौथा हक क्या है? ये सारी चीजें जरूरी है, कहां करते हैं लोग, कहां करते? चौथी चीज है अजान और इकामत है। बच्चा पैदा हो, अजान और इकामत को तहनीक से पहले करना चाहिए। दाहिने कान में अजान दी जाए, बच्चे को उठाए दोनों हाथ में, और दूसरा आदमी अपनी कान पर उंगलियां रखकर जैसे मस्जिद में अजान दी जाती है आहिस्ता आहिस्ता अजान दी जाए। वहां तो लोगों को नहीं सुनाना, सिर्फ बच्चे को सुनाना है, इतना जोर से भी ना दे कि छोटे बच्चे के कान ही फट जाए, कि उसका शैतान तो क्या भागेगा, पूरी हॉस्पिटल का शैतान भाग जाएंगे। इसलिए छोटा बच्चा है, उसी के कान में आवाज, यहां नमाज के लिए नहीं बुला रहे, तो आहिस्ता से अजान के अल्फाज ठहर ठहर कर कहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और लेफ्ट कान में इकामत कही जाए जैसे मस्जिद में इकामत कही जाती है। हदीस में आता है जब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहां पहला बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम है सैयदाना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फौरन लाया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाने कान में अजान दी और बाएं कान में इकामत कही और फरमाया, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुआ इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये कान में भी दुआ पढ़ दे तो मुस्तहब है, अजान और इकामत देने के बाद ये दुआ पढ़ ली जाए, इन्नी उईदुहा बिका, मैं तेरी जात को भी तेरे बच्चों को भी शैतान मर्दूद से अल्लाह से पनाह में देता हूं। इन्नी उईदुहा बिका, है कोई किया किसी ने, कोई करता है? अजान इकामत ही मुश्किल से देते। हां, अजान और इकामत क्यों करवाई जाती है, हिकमत क्या है इसमें? ताकि बच्चे के दिल और दिमाग में सबसे पहले अल्लाह की अजमत, अल्लाह के नाम का पैगाम उस बच्चे के दिमाग में पहुंच जाए। और दूसरी हिकमत, अजान और इकामत सुनकर शैतान भाग जाते, बच्चे को तकलीफ नहीं देते। ये दो चीज है, हिकमत है। अगर शौहर नहीं है तो मस्जिद के इमाम का या किसी मौलवी साहब का इंतजार नहीं करना है, वरना तो फिर कितने घंटों में कितना म्यूजिक बच्चा सुन लेगा हॉस्पिटल का। बल्कि मां खुद भी अपने बच्चे के कान में अजान दे सकती है, उसके लिए पाकी नापाकी जरूरी नहीं है। यहां मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए नहीं है, बस अजान के अल्फाज। कितनी माएं होगी जिसको अजान के अल्फाज याद होंगे और इकामत के अल्फाज याद होंगे, वो इंतजार करते हैं कब आए कोई और अजान दे। फौरन कोशिश करनी चाहिए, स्टेबल हो जाए, बच्चा हाथ में दे नहला दिया, उसके कान में अजान, दूसरे कान में शुरू से अल्लाह के नाम की अजमत, और अल्लाह शैतान से इसकी हिफाजत करेगा। ये तो है चार हक हो गए। पांचवा हक, आज का मौजू बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, ये आइंदा नस्लों में दीन कैसे पैदा हो, बच्चा नेक कैसे बने, मां बाप का फरमा बरदार कैसे बने। मां बाप कहते हैं ना, हम तो उसका हर राइट पूरा करते हैं, उस जो मांगता है देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मां बाप की नाफरमानी करता है, जो मांगता है ला देते हैं, हर चीज उसकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, क्योंकि हम तरतीब वार से अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते जो अल्लाह के हबीब ने बतलाई है। पांचवा हक अकीका, बच्चे की पैदाइश के बाद उसके चार हक पूरा हो गया, गुसल दे दिया, तहनीक करा दी, अजान इकामत हो गई, दूध पिलाना बावजू उसका हुक्म, पांचवा हक अकीका। ये लफ्ज अक्कुन से है, अक्कुन जिसके माना है काटना, टू कट। अकीका जो कि बच्चे की पैदाइश के 7 दिन के बाद उसके बाल काटे जाते हैं, वी नॉट गोइंग टू कट द हेड द चाइल्ड, द हे ऑफ द चाइल्ड, उसके बाल काटेंगे। बाज़ुलमा कहते हैं 7 दिन के बाद लड़का है तो 2 शीप डुम्बे, लड़की है तो 1 जानवर को हम काटेंगे, ज़बह करेंगे। इसी मुनासिबत से इसको अकीका कहा जाता है। अब अकीके की शरी हैसियत क्या है, अकीके का हुक्म क्या है? हजरत फुकहाए किराम के बहुत सारे अकवाल है, बास कहते अकीका करना वाजिब है, जरूरी है, और बास कहते सुन्नत है, और बास कहते हैं मुस्तहब है। लेकिन हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुस्तहब है अकीका करना, जैसी जैसी इस्तेतात है वैसे अकीका किया जाए। अपनी हैसियत को देखें, अगर आला दर्जे का मालदार है तो लड़के के लिए 2 और 2 से ज़ायद भी कर सकता है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अनु के यहां हर बबच्चे के होने पर 100 से ज्यादा बच्चे थे, अल्लाह के नबी ने दुआ की थी उनके लिए, अल्लाह इनके माल में बरकत दे। तो माल में क्या होता था, दरख्त साल में 1 बार खजूर देता है, उनका दरख्त 2 बार खजूर देता था, अल्लाह इनके बच्चे में बरकत दे। तो मैं कई बच्चे तो मेरे अपने हाथ से दफनाए मेरी जिंदगी में, उनकी लंबी उम्र थी, 100 से ज्यादा चिल्ड्रन हुए। फरमाया मैंने हर बच्चे के होने पर ऊंट ज़बह किया, ऊंट ज़बह किया, वो तो महंगा होता है, तो अगर ताकत है तो वो भी कर सकते। गरीब आदमी है, कमजोर है, अकीका करना चाहते हैं तो लड़के की तरफ से 1 करना चाहे, चलो 2 की इस्तेतात नहीं है, पैसे इतने नहीं है, लेकिन मक्खी चूस नहीं होना चाहिए। 1 तो है मक्खी चूस और 1 है गरीब, दोनों में फर्क है। एक आदमी कहीं मुफ्ती साहब ने 1 बता दिया, 1 ही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो मक्खी चूस लोगों के लिए नहीं, वो तो कमजोर गरीबों के लिए है। अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश पर और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश पर अकीका किया तो दोनों की तरफ से 1-1 डुम्बा ज़बह किया है, 1-1।
جتنی حیثیت.
خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکا ہو تو دو بکرے، لڑکی ہو تو ایک بکرا عقیقے میں کرنا چاہیے. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر آدمی میں عقیقے کی استطاعت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا چاہیے. جیسے کسی نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، بندہ اتنا غریب ہے کہ وہ عقیقے میں بکرا ذبح نہیں کر سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر لو.
دیکھا،
کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر قربانی کر دو.
انڈے کو ذبح نہیں کرنا، مرغی.
حقیقت عقیقہ کی حکمت کیا ہے؟ کیوں عقیقہ کروایا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے اذان اور اقامت میں وجہ میں نے حکمت، آئی مینشن دا حکمت اینڈ وزڈم بہائنڈ اذان اینڈ اقامہ فور دا چائلڈ. واٹ از دا وزڈم اینڈ حکمت بہائنڈ دا عقیقہ آف دا چائلڈ؟ بزرگان دین نے، دا علماء، دا اسکالرز مینشن مینی تھنگس. حدیث میں آتا ہے، عن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہ بعقیقت یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق راسہ. حدیث میں کیا فرمایا؟ الغلام تین چیزوں کی وضاحت فرمائی. پہلی چیز، لڑکا یہ ایک گروی ہے. گروی کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرا مجھے 50 پاؤنڈ چاہیے تو میں اپنی گھڑی کسی کے پاس گروی رکھتا ہوں. بھائی میری گھڑی تیرے پاس رکھ، 50 پاؤنڈ مجھے بورو کر، جب میں تجھے 50 دے دوں تو میری گھڑی مجھے واپس کر دینا. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گروی ہوتا ہے. عقیقہ کر کے ہم اس کی جان کو چھڑاتے ہیں. عقیقہ کر کے ساتویں دن جانور ذبح کر دینا چاہیے. جانور کے ذبح کرنے میں اللہ کی بڑی حکمتیں رکھی ہے. پہلی حکمت، اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے تو پہلی حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے وہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، اور عقیقہ نہیں کیا وہ سفارش نہیں کریں گے. Those parents who made the عقیقہ for the children will be making intercession for their parents on the day of قیامت. ایک حکمت تو علماء یہ بیان فرماتے. دوسری حکمت یہ ہے، عقیقہ کرنے سے بچے کی بلائیں، مصیبتیں، آفات سب دور ہو جاتی ہے. اسی لیے لڑکے پر دو رکھے اور لڑکی پر ایک رکھا ہے، چونکہ لڑکے پر بلائیں، بوائے پر بلائیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی طرف سے دو ہے، اور بکری ایک گوٹ ہے، ایک شیپ ہے، لڑکی کے لیے اس پر کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک کا حکم دیا ہے. معلوم ہوتا ہے دا وٹ ایور ڈیفیکلٹی وٹ ایور مصیبت اینڈ پرابلمس اینڈ کیلمٹیز وار گوئنگ ٹو کم آن دا چائلڈ تھرو دا عقیقہ، ان شاء اللہ اللہ ول پروٹیکٹ دا چائلڈ فور گڈ. تیسری حکمت، دا تھرڈ وزڈم بہائنڈ دا عقیقہ، دوست احباب کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے یہاں بچہ ہوا ہے، نہیں تو سب کو بتانا پڑے گا بچہ ہوگی کس کا ہے، فلاں کا ہے، کس کا ہے، فلاں کا ہے، کس کا ہے، فلاں کا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے. لیکن سوال ایک یہ ہے، دا کوشچن ارائزز وائی یو ہیو ٹو میک عقیقہ آن دا 7 days وچ از مینشن ان دا حدیث، یوم السابع ساتویں دن، چھٹا کیوں نہیں؟
पांचवा क्यों नहीं, दसवा क्यों नहीं, सातवें दिन अकीका, उसकी क्या वजह है? शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेंशन इन इस किताब इन हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, विलादत द डे ऑफ बर्थ और अकीका के दरमियान में डिस्टेंस जरूरी है। क्यों? पैदाइश के बाद मां की तबीयत इतनी ठीक नहीं होती है क्योंकि कमजोरी हो जाती है। व्हेन द मदर गिव बर्थ देन द मदर लिटल बट बिकम वीक, और बहुत सारे काम भी करने होते हैं, बच्चा भी पैदा हुआ तो और भी काम काज है, तो बच्चे के संभालने में मशगूल रहते हैं। उस दिन इतना जल्दी जानवर तलाश करना, हमारे यूके में तो ठीक है कि ऑर्डर कर दिया भाई काट देना, है ना, यहां तो ठीक है, लेकिन इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अरब में है, वहां थोड़ा हुक्म करते हैं। आजकल पता नहीं, लेकिन उस जमाने में तो आज भी अरब में तलाश करना पड़ता है, जाकर कहीं पर हाजियों को तलाश करना पड़ता है, या उसका जो एजेंट होता है तलाश करता है कि भाई हमें 100 चाहिए, 100 तो वो तलाश करके लाते हैं। तो सिर्फ यूके वाले को ना देखा जाए, सारी दुनिया पर अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई है, तो तलाश करने में भी देर लगती, 2-4 दिन लगता है, कहीं से वो बकरा 2 या 1 लाने पड़ेंगे, तलाश तो करना ही पड़ेगा, एकदम तो नहीं मिल जाए, क्योंकि क्या पता है कि लड़की है लड़का है, वो होगा तो पता चलेगा। तो एक हिकमत ये भी है और मेहमान नवाजी भी, असल तो यही है, मेहमान नवाजी भी करनी है तो कुछ टाइम चाहिए, कुछ दिन चाहिए। अगर इधर बच्चा हुआ दूसरे दिन ही हो तो, जैसे शादी, आज शादी कल वलीमा, चलो ठीक है, वो तो पहले से प्रिपरेशन हो जाता है, लेकिन यहां तो पता ही नहीं लड़का है या लड़की, फिर तैयारी करनी है। जब तक बच्चा नहीं होगा कैसे जानवर तलाश करेंगे, एक तलाश करें या 2 तलाश करें, इसलिए वरना कोई कहेगा पागल है, बच्चा पैदा होने से पहले बकरे ला के रख दिया, तो उसमें दीन और दावत के लिए इसलिए 7 दिन का वक्फा रख दिया गया है। दूसरी हिकमत, चूंकि बाल भी काटने होते हैं और जब बच्चा बर्थ देता है इतने बड़े बाल नहीं होते, कुछ दिन लगा दे ताकि बराबर सर बच्चे का स्ट्रांग हो, वरना उसकी चमड़ी एकदम फौरी तौर पर करेंगे तो बहुत मामूली और नरम होती है, जबकि 7वें दिन में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए कुछ वक्फा रखा गया है। लेकिन अगर किसी ने 7 दिन से पहले अकीका कर दिया, नो प्रॉब्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिससे रिवायत में आता हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश पर उसी दिन एक ज़बह कर दिया, किया है, करना चाहे कर सकते। फिर यानी एक तो ज़बह किया, फिर 7वें दिन में दूसरा ज़बह किया, रिवायत में है। बहरहाल 7वें दिन की तख़सीस करना, टू स्पेसिफाइड द 7 डे इज नॉट कंपल्सरी, बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि 7वें दिन का ख्याल रखे। अगर मंडे को बच्चा पैदा हुआ तो इतवार को अकीका कर दे, 7 दिन पूरे हो जाए, और अगर हालात ठीक नहीं है ऐसी सूरत में 40 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 28 दिन के बाद, बहरहाल जब भी करना चाहे अकीका कर सकता है। और बच्चे का बाल मुंडवाना, जैसे इस हदीस में, समूरा रजी अल्लाह के हदीस में, ये भी मैं हदीस की तशरीह कर रहा हूं, भी तो उनके बकदर बाल काटने के बाद उसके बकदर चांदी, जितनी उसका वजन हो इतनी चांदी या इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अनहु के बाल मुंडवाए और उनके बकदर चांदी खैरात की, और बालों का वजन गालिबन 1 दिरहम या दिरहम से कुछ कम था, रिवायत में आता है। और तीसरी चीज हदीस में बयान की गई, वही सुम्मी, उसका नाम रखे, अकीका करें, बाल काटे और उसका नाम रख ले, न कि पूरी दुनिया में घूमता फिरे कि जब लोगों का सबका नाम में सबसे फाइंड आउट करूंगा फिर पसंद होगा फिर रखूंगा एक महीने के बाद, ये नहीं। 7 दिन से पहले भी नाम रख सकते हैं, अगर कोई अकीका नहीं करना चाहता पहले ही से नाम रख दिया नो प्रॉब्लम, ये तो मुस्ताहब है। हां कोई पहले से नाम रखना चाहे, बच्चा पैदा होगा तो मैं ये नाम रखूंगा, अभी हुआ नहीं, होगा, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शाह वलीउल्लाह साहब का नाम उसकी मां के पैदा होने से पहले ही कह दिया कि इसका नाम वलीउल्लाह रख लेना, अल्लाह वाले थे, उनको पता था कि अल्लाह का वली पैदा होने वाला है और उनका नाम ही शाह वलीउल्लाह रख दिया गया। ये तो है। फिर उलमा ने कहा नाम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बूटों के नाम हो या फिर सिंगर्स के नाम हो, बड़े बड़े एक्टर्स के नाम हो और ऐसे ऐसे नाम हो, जिब्राइल नाम रखें, मिकाइल रखें, इसराफिल रखें, मलिकुल मौत रखें, तो मलिकुल मौत आएगी मलिकुल मौत के पास, साहबा के नाम रखें, अवलिया के नाम रखें, अंबिया के नाम रखें, बहुत से अच्छे अच्छे नाम है, नाम रखे, नामों का भी असर होता है। छठा हक, मां बाप के ऊपर औलाद का क्या है, अच्छा नाम तजवीज करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल्ल जलालहू के नजदीक तुम्हारे नामों में सबसे ज्यादा पसंद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया अंबिया ने सलातो सलाम के नामों पर अपने नाम रखो, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, और ज्यादा सच्चे नाम हारिस और हुमाम है, इब्ने हुमाम, और सबसे बुरे नाम हर्ब, लड़ाई करने वाला, ऐसे नाम न रखे कि लड़ता ही रहे। अच्छे नाम रखने की वजह क्या है, उस पर जोर दिया गया, इट इज एम्फसाइज फ्रॉम इस्लाम दैट कीप योर चाइल्ड नेम द परफेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू इस्लाम द इस्लामिक नेम। उसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन तुमको तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप का नाम के साथ पुकारा जाएगा, तो तुम्हारा नाम अच्छा रखो। समझ नहीं बात, इसलिए लड़कों के नाम भी अच्छे रखे जाएं, लड़कियों के नाम भी अच्छे रखे जाएं। बुरे नाम रखने की हदीस में सख्त मुखालिफत है, मुमानियत है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को चेंज करते थे, ही यूज्ड टू चेंज द ऑल द बैड मीनिंग नेम। एक रिवायत में है एक शख्स का नाम था अस्वद, अस्वद इसके माना है काला, अस्वद के माना काला, अल्लाह के हबीब ने बुलाया तेरा नाम अस्वद ने अबियज खूबसूरत, नाम चेंज कर दिया। ये रिवायत है मजाहिर हक मिश्कात की शरह जिल्द 5 में। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अनु की बेटी का नाम भी बदल दिया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अनु की एक बेटी का नाम आसिया, एक है अलीब के साथ जो फिरौन की बीवी बाद में इस्लाम, वो आसिया है अलीफ खरा से बर आ, और एक है आसिया गुनेगार नाफरमान डिसोबीडियन आयन के साथ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम बदल दिया, उनका जमीला नाम क्या बदला, योर नेम इज जमीला, खूबसूरत फरमाबरदार। बहुत से वाकिया हदीस में आते हैं लोगों ने जहालत और नादानी की वजह से और मीनिंग न जानने की वजह से ऐसे नाम रखे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम को बदल दिया। आजकल बहुत से लोग हैं जो अपने को दानिश्वर समझते हैं और अपनी औलाद का नाम शहनशाह रखते हैं, शहनशाह है ना, शहनशाह है, या उनका लकब शहनशाह रख दिया। दोनों गलत है। इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिवायत से नकल किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक बदतरीन नाम वाला वो शख्स होगा जिसको दुनिया में शहनशाह का नाम दिया गया है। शहनशाह कभी ऐसा नाम नहीं रखे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बदतरीन वो शख्स होगा जिसको शहनशाह कहा जाए, जिसका नाम ही शहनशाह रखा जाए। और ऐसे नाम भी रखने की बड़ी मुमानियत है जिस नाम से अपनी तारीफ हो, नाम ही के अंदर में तारीफ है। ऐसे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत जैनब बिनत अबी सलमा रजी अल्लाह तआला ने कहती है, मेरा नाम बर्रा बर्रा था, बर्रा बर्रा के माना बहुत नेकोकार, बहुत नेकी करने वाली। तो नबी अकरम ने फरमाया, अपने आप की तारीफ न करो, अपने आप की तारीफ न करो, तुम में जो नेकोकार है अल्लाह उसको खूब जानता है कौन नेकोकार है। तुम इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखो। अल्लाह के हबीब ने उसका बर्रा से नाम चेंज कर दिया और क्या रखा, ज़ैनब रखा। तो अपनी तारीफ अगर खुद जाहिर होती हो ऐसे नाम को बदल देना चाहिए। जिन नामों में घमंड हो, तकब्बुर हो, तरफ़ हो, आई एम समथिंग हो, ऐसे नामों को नहीं रखना चाहिए। और ये तो हो गए छह हक, सातवां हक मां बाप के ऊपर बच्चे का, सातवां हक है जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो उसको सबसे पहले अब्बा नहीं, बोलो अब्बा नहीं नहीं नहीं, बोलो अम्मी नहीं, दादा नहीं नहीं नहीं, नबी अकरम साथ में उसको पहले सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह इज वन, ऐसा सिखाओ। दादा तो बोलेगा पूरी जिंदगी और दादी भी बोलेगा, नाना भी बोलेगा, नानी भी बोलेगा, वो तो बुला नाम लेकर ही बुलाएगा, लेकिन वो बुलाओ जिसने पैदा किया उसका नाम पहले बुलाओ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के सुनहरे नबी है, प्यारे नबी है, ताकि जबान पर सबसे पहले अल्लाह का नाम हो और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो। जब ये बोलना बराबर शुरू करे तो सबसे पहली सूरत उनको सिखाओ, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों के लिए बयान सुने। जितनी लड़कियों जिनकी शादी हुई, जो प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश करनी है, फिर जिंदगी भर परेशानी नहीं होगी, मौलवी साहब के पास पिता भी लेने की जरूरत नहीं होगी। देखा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, जब बच्चे की जबान खुल जाए तो सबसे पहले सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अद्दुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। इसकी तालीम दो, ये आयत सिखा दो, ये आयत इज्जत है और इज्जत की आयत सिखलाओ, जो भी तौहीद के कलमे बच्चे की जबान पर जारी हो सके वो कलमे सिखा दो जिसमें अल्लाह की तौहीद हो। ये तो हो गया सातवां हक। और आठवां हक वालिदैन की जिम्मे औलाद का, जब बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए, जैसे आजकल चार साल या पांच साल का बच्चा स्कूलों में जाता है, माँ बाप भर खुशी से स्कूल पहुंचाते हैं, माँ भी सुबह से नहलाने धुलाने में बच्चे के साथ मशगूल हो जाती है, बाप भी बच्चे को ले जाने के लिए गाड़ी की सफाई में तैयारी करता है, चौकन्ना हो जाता है, नौकर नौकरानी के हाथ बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तो उस वक्त माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए कि इस बच्चे को हम पहले कलमा सिखाए, कुरान पढ़ाए, ताकि इसकी जबान पर कलमा हो, कुरान जारी हो, ताकि इसका मिजाज इस्लामी बने। लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार वाला ना बने। हाँ, क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई अब मुसलमानी तेरी, था कभी हैरान जमाना तेरे शौकत हो दब दबा देख कर, हो गई जरबुल मसल दुनिया में हैरानी तेरी। कहां गया वो पहले जमाने के माँ बाप थे, बच्चे को पहले क्या सिखाते थे, मोहब्बत, वुजू के साथ दूध पिलाना, अच्छे नाम, तालीम की फिक्र। मौलाना अहमद अली लाहौरी की अहलिया मोहतरमा अपने बच्चे की परवरिश अहमद अली लाहौरी बने बाद में अजीब अंदाज से करते थे, बच्चे को तौहीद सिखलाई थी, ईमान बनाया बच्चे का, हर चीज अल्लाह देता है बच्चे को, कहते हर चीज अल्लाह देता है। एक मर्तबा दूध बेचने वाले ने दूध देने के लिए दस्तक दी, अम्मी ने कहा बेटा जाओ देखो कोई दरवाजे पर आया है, बच्चा दरवाजे पर जाता है, दूध वाला उसको दूध का प्याला दे देता है, अम्मा पूछती है बेटा दूध कहां से लायो, बेटा कहता है बाहर अल्लाह मियां खड़ा है, उसने दिया है, क्योंकि वो ऐसा मिजाज बनाया था हर चीज अल्लाह देता है, तो बाहर कोई अल्लाह मियां खड़ा था दे दिया मुझे, उसके दिमाग में यही बैठा हुआ बच्चे के दिमाग में, रोटी अल्लाह देता है। अम्मी ने कहा शाबाश बेटा शाबाश, सब कुछ अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है, सालन भी अल्लाह, वो अपने बच्चे का मिजाज इस्लामी मां बनाती है, हर चीज अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये तरबियत। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी वाले मां का किरदार के देखो, बच्चा है कितनी जल्दी हाफिज कुरान बन गया, दूध पिलाने की वक्त में ही कितने बच्चे उसने कितने सिपारे कितने कुरान के चीजें याद कर ली उसने। नौवा हक है, वक्त कम है, मैं 10 हुकूक बता देता हूं वरना बताना तो बहुत कुछ है। माँ बाप के ऊपर बच्चे का नौवा हक है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो दीनी अहकाम की तालीम उसको देनी चाहिए, सबसे पहले उसको नमाज का हुक्म करे, जैसा कि हदीस में है मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको सबसे पहले नमाज सिखाओ, सबसे पहला काम ये करना है। और 10वां हक ये है वालिदैन के ऊपर, जब लड़का या लड़की अब हो जाए बालिग 15 साल पर, जाहिरी बात है कि 7 साल की उम्र में उसको नमाज का हुक्म करें, फिर 10 साल पर फरमाया न पढ़े तो उसको तंबीह करें। अब नमाज तो उस पर फर्ज होती है जब ये 15 साल का हो जाए, लेकिन उससे पहले देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हम गिनते हैं, गोया के 8 साल पहले नमाज की तरबियत करवाई जा रही। क्यों? उसको पूरी जिंदगी दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी है, और उसको तरबियत ऐसी करो कि कभी नमाज ही ना छोड़े।
अब इसको 7 साल से लेकर 13 साल तक नमाज का हुक्म नहीं किया, अब तुम 14-15 साल का ये दरख्त बड़ा हो जाए, जब पौधा था उसको घुमाना चाहिए था, राइट साइड लेफ्ट साइड तुमने घुमाया नहीं, अब ये दरख्त बन गया, कैसे इसको घुमाओगे, अब तो नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कभी गया कभी नहीं गया, 8 की खाट की 307 की करेगा और क्या करेगा, जुमा तो जुमा, ईट टू ईट, जनाजा तो जनाजा, और कुछ, क्योंकि उसके दिल में वो अहमियत नहीं, वो अजमत नहीं। आपने 8 साल तो इस पर मेहनत की है, नमाज की, अब इसको छोड़ो, अब देखो ये कैसे ही। इसलिए हर चीज में पहले प्रैक्टिस करवाई जाती, अरे क्रिकेटर खेलने जाता है पहले प्रैक्टिस करता है, हर खिलाड़ी हर मैदान में पहले प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट उसको नहीं भेजा जाता है। अब 15 साल तक नमाज का कुछ नहीं कहा, अब कहते बेहतर नमाज पर, वो कहां पढ़ने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है, और जब बालिग हो जाए तो उसके निकाह का इंतजाम किया जाए, और उसके लिए उसका बंदोबस्त कर देना चाहिए, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तलाश करें। इसीलिए मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी है वो है या अय्युहल्लज़ीन आमनु कु अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि मुझे कुछ दरख्वास्त, मुझे कुछ नसीहत कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु कु अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा, फरमाया जब तुम ये आयत सुनो अपने कान को मुतवज्जे करो, दिल को हाजिर करो, का अल्लाह कह रहे ईमान वालों से कि अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, अपने औलाद की फिक्र करो, ये बहुत ज़रूरी है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने औलाद की बड़ी फिक्र करते थे। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम आगे पढ़ेंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने और नेक और सालिहीन ने अपने बच्चों को क्या नसीहत की है, वो नसीहत भी अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही उसी पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बनाए, नेक और सालिहीन में से बनाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमारे घरों में सुकून नसीब फरमाए। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वलिअज़ीम सुल्तानिक, या अकरमुल अकरमीन या दय्यान या सुल्तान, ए अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और आया और अहादीस मुबारका पढ़ी है, अच्छी बातें पढ़ी है, दीन की शरी बातें पढ़ी है, फ़िका के मसाइल पढ़े हैं, अल्लाह अल्लाह तो एक एक मसले पर और एक एक हदीस पर 100-100 और 1000 नफल रकात का सवाब देता है। अल्लाह ऐ अल्लाह हमारा बैठना सुनना कबूल फरमा, हमारा बैठना और सुनना कबूल फरमा, हमारा बोलना और सुनना कबूल फरमा, तेरे खजाने में कबूलियत का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा, हमारी औलादों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, माँ बाप को औलाद के हकूक़ और औलाद को माँ बाप के हकूक़ अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद बिगड़ी हुई है, फिसली हुई है, राह रास्ते से हट चुकी है, गुमराह हो चुकी है, अल्लाह उनको साहे राह रास्ते पर खड़ा फरमा, सिरात मुस्तकीम पर खड़ा फरमा, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह बे औलादों को औलाद साले नसीब फरमा, औलाद साले नसीब फरमा, और औलाद वालों को लाहुल आलमीन नेक और साले बना, औलाद वालों के औलादों को नेक और साले बना। ऐ अल्लाह जो 10 हकूक बयान किए हैं जो माँ बाप के लिए ज़रूरी है इस आयत के ऊपर, ए इलाहुल आलमीन उन हुकूक को अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, लोग घरों में बैठकर सुन रहे हैं और दूसरी कंट्रियों में भी लोग सुन रहे हैं, सबका सुनना कबूल फरमा, सबका सुनना कबूल फरमा। साउथ अफ्रीका में, कनाडा में और अमेरिका में बहुत सारी जगह पर लोग सुन रहे हैं,
پورے یو کے میں اللہ سب کا سننا قبول فرما، اللہ سب کو عفو عافیت نصیب فرما، اللہ ہمارے صراط مستقیم گروپ پر اور اسی طرح ہمارے بہت سارے گروپ پر لوگ سنتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان سب کا سننا قبول فرما، سب کے اولادوں کو نیک بنا، سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اور سب کی مغفرت فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کی اولادوں کو دیندار بنا، اللہ دین کے دائی بنا، سب کو ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان پر وقت آئے تب موت بھی نصیب فرما اللہ العالمین. اے اللہ مکسر کے ذریعے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اسی طرح یوٹیوب کے ذریعے سے اے اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے سب کا سننا قبول فرما اللہ العالمین. میرے دوست احباب، میرے مریدین، متعلقین، محبت رکھنے والے سب کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے درس کو قبولیت عطا فرما، دنیا آخرت میں قبولیت عطا فرما، اخلاص نصیب فرما اللہ، ہمارے سارے راستے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، راستوں کی رکاوٹ دور فرما، دشمنوں سے اور دشمنوں کی دشمناوت سے، حاسدوں سے اور حاسدین کی حسد سے اللہ العالمین، اے اللہ دشمنوں کی دشمناوت سے، ظالمین کے ظلم سے اے اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اکرم الاکرمین، والدین کی اور اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلیہ وسلم.